नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर ऊर्जा और बाजार सुधारों तक भारत की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सुधार एक्सप्रेस पर सवार हो गया है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया पर साझा लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है और अगली पीढ़ी के सुधारों से गतिमान प्रगति की सराहना भी कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 भारत के लिए सुधारों के वर्ष के रूप याद किया जाएगा। इस वर्ष विभिन्न सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सरकार ने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन को सरल और सुगम बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर साजो सामान, ऊर्जा और बाजार सुधारों तक भारत की विकास यात्रा स्थायित्व और भरोसे पर निर्मित रही है। इन कदमों से 2047 तक विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बातचीत की। इसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक बदलाव विकसित भारत का एजेंडा विषय पर चर्चा हुई। विकसित भारत को समग्र राष्ट्र की आकांक्षा बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सरकार की नीतियों में परिलक्षित होता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रामेश्वरम में आयोजित चौथे काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच संबंध सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि सभ्यतागत और आध्यात्मिक भी है, जिसने हजारों वर्षों से भारत को एकजुट रखा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आदान प्रदान भारत की साझा विरासत और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटन के बजाय घुसपैठियों को जमीन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। कोलकाता में श्री शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार आने पर घुसपैठियों को बंगाल से बाहर कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत जीराम जी विधेयक पारित किया। इसके माध्यम से मनरेगा योजना की कमियों को दूर किया जाएगा। श्री चौहान ने भोपाल में कहा कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ते के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल है और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल से जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना, मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना, अदालती मामलों में कमी लाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार व्यापार सुगमता और बेहतर जीवन यापन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये विधेयक 5 जनवरी से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के कालीन सत्र में पारित किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने आगामी वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का परीक्षण किया है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में परीक्षण का वीडियो साझा करते हुए कहा कि ट्रायल रन कोटा नागदा खंड के बीच किया गया, जिसमें ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए नई तारीख जारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब मतदाता सूची का मसौदा 6 जनवरी को जारी होगा। इससे जुड़े दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगी। प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च को होगा। राज्य में सभी गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जा रही हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उनका 80 वर्ष की उम्र में कल ढाका में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। बांग्लादेश ने खालिदा जिया के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। भारत ने श्रीलंका को 5वें महिला 2020 क्रिकेट मुकाबले में 15 रन से हराकर श्रृंखला 5-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।